السلام علیکم خواتین حضرات، ہم اکثر علم کی بات کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بعض کہتے کنفیوژن سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس علم کی رب بات کرتا ہے یا جس علم کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور تلقین کی مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی، بلکہ اسے فرض کر دیا مسلمان پر کہ خواب و مرد ہے یا عورت، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. علم میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے، یہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ دینی علم ہے اور یہ دنیاوی علم ہے. در حقیقت علم جس سے انسان کو فائدہ ہو وہی صحیح علم ہے اور اسی کے پیچھے بھاگنا چاہیے. ہم علم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حصول روزگار کا ذریعہ ہے، کہ ہم جب علم حاصل کر لیں تو پھر روزگار ہمیں مل جائے گا. علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں. علم تو ہمارے اندر وژن پیدا کرتا ہے، علم ہمارے مینٹل ہورائزن کو براڈن کر دیتا ہے. علم سے ہمیں یہ پہچان آ جاتی ہے کہ کیا اچھا اور کیا برا. علم ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے بعد اچھے کو ایڈاپٹ کر لیا جائے، برے کو ڈراپ کر دیا جائے. یہ علم ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان میں فہم و فراست، عقل و تدبر پیدا ہوتا ہے. اور جب وہ فہم و فراست اور عقل و تدبر حاصل ہوتا ہے انسان کو، تو پھر اس کے اندر ایک تمیز پیدا ہوتی ہے کہ اچھوں میں سے سب سے اچھا کیا، اور اس کو پھر ایڈاپٹ کرنا ہے. کہ ارج عقل ہی پیدا کرتی ہے. علم کا منبع رب تعالیٰ ہے کہ اس نے ہی تخلیق کیا اسے. میں منبع اس سینس میں کہہ رہا ہوں. اسی نے عرش پر سے علم کی نہریں بہا دیں، اور جو علم کی نہریں بہ نکلی ہیں عرش سے، ہم انہی نہروں سے استفادہ کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ انسان چونکہ مکمل نہیں ہے، انسان میں بہت سی خامیاں ہیں، تو ہم اپنی کم علمی اور کج فہمی کی وجہ سے تھوڑے کو بہت سمجھ بیٹھتے ہیں. جہاں ہمیں تھوڑے کو بہت سمجھنا چاہیے، وہاں ہم بہت کو تھوڑا سمجھتے ہیں. یہیں پہ گفتگو کے دوران ایک بار میں نے عرض کی تھی کہ روحانیت میں سخی کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے تو زیادہ بھی تھوڑا لگے، اور جب کسی سے وصول کرے، کچھ کسی سے لے رہا ہو، تو تھوڑا بھی زیادہ لگے. تو جس میں یہ شفٹ پیدا ہو جائے کہ دیتے ہوئے زیادہ بھی تھوڑا لگے، اور جب کوئی اسے کچھ دے تو اسے تھوڑا بھی زیادہ لگے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سخی ہے. لیکن ہم اپنی کج فہمی کی وجہ سے تھوڑے کو ہمیشہ زیادہ سمجھتے ہیں. یوگسلاوین زبان میں ایک پروورب ہے کہ دنیا کو کبھی کسی علم والے نے یا عقل والے نے نقصان نہیں پہنچایا، نہ دنیا کو کبھی کسی علم سے بے بہرا شخص نے اور پاگل شخص نے کبھی نقصان پہنچایا. دنیا کو اگر نقصان پہنچا تو کم علم اور کم عقل لوگوں سے پہنچا. جہالت خوفناک چیز ہے، لیکن کم علمی اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ ایک خوفناک چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس علم تھوڑا ہو اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بہت قابل ہوں. یہ انتہائی خوفناک چیز ہے. سب سے زیادہ علم جہاں سے بات میں کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ کے پاس ہے، اور رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے پوری طرح نوازا. رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رموز اسرار کائنات تک عطا فرما دیے. یہ جو حروف مقطعات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ کائنات کے اسرار کے رموز ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو علم کا شہر کہا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو علم کے شہر کا دروازہ. ایک دن میں ایک سوال پڑھ رہا تھا جو پیش ہوا لوگوں کے سامنے، کہ 17 اونٹ ہیں اور انہیں 3 آدمیوں پر تقسیم ہونا ہے. ایک آدمی کا حصہ ان 17 اونٹوں میں 50% ہے، دوسرے آدمی کا اس میں شیئر جو ہے وہ 1/3 ہے، اور تیسرے آدمی کا حصہ اس میں 1/9. اب وہ 17 کیملز کی تقسیم کسی سے ہو نہیں پا رہی تھی کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے. زندہ اونٹ ہیں، کاٹے وہ نہیں جا سکتے. تو بالآخر مدینہ کے رہنے والوں نے یہ کہا کہ اس کیس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حضور پیش کر دیا جائے، وہاں سے حل مل جائے گا. تو معاملہ پیش کیا گیا جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی کر دیتے ہیں اس کو. تو آپ نے اپنے غلام کمبر سے کہا کہ میرا ایک اونٹ لا کے ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیں. تو وہ ایک اونٹ وہاں آنے سے 18 ہو گئے. تو اس کا 18 کا 50% 9 اونٹ ہو گئے. تو آپ نے جس کا 50% اس میں شیئر ہولڈنگ تھی، وہ 9 اونٹ اس کے حوالے کر دیے کہ آپ کے 9 اونٹ ہیں 50% شیئر 17 میں سے. جس کا 1/3 تھا اس کو آپ نے 6 اونٹ 1/3 کے طور پہ دے دیے کہ یہ آپ کے 18 اونٹوں میں سے 1/3 آپ کا 6 اونٹ بنتے ہیں. یہ 15 اونٹ دے دیے گئے. جس کا 1/9 شیئر تھا اس کا 18 اونٹوں میں 2 کا شیئر بنا. تو 2 اس کو پکڑا دیے کہ یہ تمہارے اونٹ ہیں، تو اپنا اونٹ واپس استبل میں بھیجوا دیا. یہ علم ہے جو انسان کو عقل کے اس مقام تک لے جاتا ہے کہ جہاں انسان ناممکن گتھیاں بھی سلجھا دیتا ہے. لیکن اس علم کے حاصل کرنے کے لیے 2 بنیادی پری ریکویزٹس ہیں. وہ علم کی راہ پر جا نہیں سکتا انسان. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح اسلام کے اندر ہر نئی چیز کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، جیسے اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے نفی کرتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، وہ تو اس کی ابتدا وہ نفی سے کرتا، لا نہیں ہے. تو عربی کے اندر جہاں میجر ایمفیسس دینا ہو کسی بات پر اس کی ابتدا نفی سے ہوتی ہے. اسی طرح بہت اہم ابتدا نفی سے کہ اپنے آپ کی نفی کر لی جائے. مسلمان ہونے سے پہلے انسان کہیں دیوتاؤں کا قائل ہوتا ہے, کہیں تثلیث پر یقین رکھتا ہے, کہیں مظاہر قدرت کو خدا مانتا ہے. تو کلمہ جب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے نفی سے شروع کرتا ہے, نفی کرنی پڑتی ہے. تو جب آدمی علم حاصل کرنے لگتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اہم پیش رفت ہوتی انسان کی زندگی میں. یہ ایک میجر مائل سٹون آتا ہے انسان کی زندگی میں, بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ انسان علم کی حصول کی طرف چلا جائے. تو اس کی ابتدا بھی ہمیں نفی سے کرنا پڑتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو کچھ بھی سمجھتے ہیں وہ سمجھنا چھوڑ دیں, اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں کچھ نہیں آتا. جس شخص کے پاس جا کے ہم بیٹھے ہیں علم سیکھنے کے لیے, وہی سب کچھ ہے بشرطے کہ وہ مجھ جیسا نہ ہو. تو اس کو جب ہم اتنا سپیریئر مان لیں گے تو اس کی ہر بات کو بے چوں چرا ہم تسلیم کرنے لگیں گے. یہی وجہ ہے کہ روحانیت میں تمثیلن ایک بات کہی جاتی ہے جس کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو الفاظ بتاتے ہیں, وہ تمثیلن کہی جاتی ہے ایک بات کو واضح کرنے کے لیے وہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے. اس سے مراد یہ ہے, اللہ معاف فرمائے, شرک اس سے مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ جب جیسے ہم پر فرض ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی ہر بات کو مراد یہ ہے کہ جب جیسے ہم پر فرض ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی ہر بات کو بے چو چرا تسلیم کر لیں, اس کی اطاعت کر لیں, اس پہ عمل کر لیں, اسی طرح اگر مرشد یا استاد جو کچھ کہتا ہے ہم اس پہ عمل کر لیں. تو جب ہم علم حاصل کرنے کسی شخص کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ قاف سے شروع ہونے والے الفاظ ہمیں اپنی ڈکشنری سے نکال دینا پڑتے ہیں. کب, کیوں, کیسے, کس طرح, کیا, یہ قاف سے شروع ہوتے ہوئے الفاظ ہمیں اپنی لغت سے ڈیلیٹ کر دینے پڑتے ہیں, ذہن سے نکال دینے پڑتے ہیں. تو جب ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اپنے استاد کے سامنے جب ہم بیٹھے ہیں تو استاد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ایز اٹ از ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, تو پھر ہم علم سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں. دوسری پری ریکویزٹ اس میں یہ ہے کہ وہ جو میں نے اپنے اندر میں اور انا کا بت پال رکھا ہے جس کی میں پرستش کرتا ہوں صبح شام, اس بت کو توڑنا پڑتا ہے سب سے پہلے. یہ جو میں اور انا کا بت ہے, ہم سب نے, میں نے, آپ نے, سب نے اپنے اندر بہت سے بت پال رکھے ہیں. ہم میں سے ہر آدمی ان بتوں کی پوجا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر تنقید برداشت نہیں کرتے. ایک زمانے میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے کلاس 8 اور 9, تو ہمارے ٹیچر ایک دن ہمیں خوشامد کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہے تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص خوشامد کا خوگر ہے. ہر شخص خوشامد مانگتا ہے کہ میری خوشامد کی جائے, اور جو آدمی کہتا ہے کہ میں خوشامد برداشت نہیں کر سکتا, میں اس آدمی کو پرے ہٹا دیتا ہوں جو میری خوشامد کرنے لگے, वो इस दावे के बावजूद खुशामद करवा रहा होता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि अगर किसी जगह कोई ऐसा आदमी आ जाए जो पहले ही दिन सबको बता दे कि मैं खुशामद पसंद नहीं करता और खुशामद करने वाले को मैं वैसे ही दफ्तर से निकाल दूंगा, तो लोग खुशामद नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक आदमी ऐसा जरूर है जो जाता है और जाके सलाम करता है कि साहब वाह मजा आ गया, मैंने दुनिया में आप वाहिद आदमी देखे हैं जो खुशामद नहीं पसंद करते, लीजिए खुशामद हो गई और उसने भी उसे कबूल कर लिया। तो ये खुशामद का बुत है हमारे अंदर, कहीं इल्म के तकब्बुर का, कहीं दौलत के तकब्बुर का बुत है हमारे अंदर जिसे हमने पाला है, कहीं हमारे अंदर स्टेटस का बुत है जो हमने पाला है, और एक इंतहाई खौफनाक तकब्बुर हम पालते हैं जो मेरे नजदीक इन तमाम जितने भी तकब्बुर हैं हमारे अंदर, इल्म का है, दौलत का है, स्टेटस का है, कसरत औलाद का है, इन सबसे ज्यादा खौफनाक तकब्बुर आजजी का तकब्बुर है कि हमें यह तकब्बुर हो जाता है कि मैं बड़ा आजिज हूं, यह सबसे खौफनाक है। और जिसको आजिजी का तकब्बुर ज्यादा है वो अपनी तरफ किसी को उंगली उठाने नहीं देता। तो हमें ये बुत अपने अंदर से निकाल फेंकने पड़ते हैं इल्म की राह पर चढ़ने से पहले, ये प्री रिक्वेस्ट्स हैं। जब हम ये पूरी कर लें तो फिर इल्म के सीखने का प्रोसेस जारी होता है। मैं लोगों के पास बहुत जाता हूं, जहां कहीं मुझे खबर मिल जाए कि नेक आदमी है वहां चला जाता हूं और जाके उससे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मुझे रूहानियत का इल्म अता कर दें, मुझे वली अल्लाह बना दीजिए। समहाउ और द अदर कोई बेचारा मुझ पर 40 साल मेहनत कर लेता है, कोई 50 साल, कोई 80 साल मुझ पर मेहनत करता है गरीब, लेकिन आखिर में वो हाथ बांध के खड़ा हो जाता है कि तुम वली अल्लाह नहीं बन सकते। तो जब सवाल करें कि भाई मैं क्यों नहीं बन सकता, मैं भी तो आप जैसा इंसान हूं, मेरा भी वही रब है जिस रब ने आपको वली अल्लाह बनाया, तो मैं क्यों नहीं बन सकता, तो अजीब जवाब आता है और हर कोई एक ही जवाब देता है मुझे कि जाओ पहले अपने अंदर से ये अना खत्म करके आओ, अपने अंदर से गुस्सा बाहर निकाल फेंको, तुम्हारे अंदर जो ये तमा और लालच छुपी बैठी है इस तमा और लालच से पहले जान छुड़ाओ अपनी। ये जो तुम्हारे अंदर इंतकाम का जज्बा रहता है हर वक्त कि इस आदमी ने मुझे घूर कर देखा था, मैं इसे बख्शूंगा नहीं, इंतकाम लेके छोड़ूंगा, ये इंतकाम का जज्बा निकालो अपने अंदर से। तुम तो किसी को अपने से आगे जाता देख नहीं सकते, तो ये हसद अपने अंदर से निकालो। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि ये तो सब मेरे अंदर है ही नहीं जो आप मुझे बता रहे हैं, तो जवाब ये आता है कि यही तकब्बुर है, यहीं फंसे हुए हूं। तो भाइयों, ये जो हम सरगर्दा रहते हैं रूहानियत के तलाश में, इस पे वक्त जाया ना करें हम। अगर इस राह पर चढ़ना है तो फिर हमें दिल से ये सब चीजें निकाल कर फेंकना पड़ेंगी, दिल साफ करने पड़ेंगे, उनको धो देना पड़ेगा दिलों को, तब कहीं जाकर दिल साफ होता है, पाक होता है कि इसमें रब आन बसे। रब बहुत पाक है, बहुत सफाई पसंद है, बड़ा नफासत पसंद है। रब वहां नहीं रहता जहां इस किस्म की बदबूदार चीजें रहती हों, लालच, तमा, हसद, इंतकाम, गुस्सा, हिर्स, वहां रब नहीं रह पाता। रब तो रहता है सिर्फ उस दिल में जो बहुत पाक और साफ है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो पेशतर इसके कि हम अपने घर में एक बहुत ही आला मकाम मेहमान को लाकर बसाना चाहें, बिठाना चाहें, हमें अपने घर को बहुत ही पाक और साफ करना पड़ता है। और वो अभी इब्तदा है, अभी तो हम चले ही नहीं कहीं, पहला कदम नहीं उठाया। तो पहला कदम तो उस वक्त उठेगा हमारा, जब हमारे उस्ताद या हमारा मुर्शिद हमें ये कह दें कि आज मैं तुम्हें रूहानियत का पहला सबक दे रहा हूं, आज के बाद कोई शख्स तुम्हें कितना ही बुरा भला कह दे, भरी महफिल में तुम्हारी तजलील कर दे, तुम्हारी तहकीर कर दे, तुम्हारी तजहीक कर दे, कोई शख्स तुम्हारे खिलाफ साजिशें करे, तुम्हारी जड़ें काटे, कोई शख्स कितना ही बड़ा तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, तुमने उसके खिलाफ दिल में बाल बराबर कोई मैल नहीं आने देना, तुमने उसे अच्छा ही गर्दानना है। तो वो ये फिर आपको पहला सबक दे देगा, मुझे पहला सबक दे देगा। तो जब आदमी इसको क्वालिफाई कर ले, इसमें प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, तो फिर अगला कदम वो सिखाता है कि आज के बाद तुम्हारी अपनी जात बिल्कुल तुम्हारे लिए अहम नहीं, दूसरे अहम है। तुमने अपने लिए जिंदा नहीं रहना, तुमने दूसरों के लिए जिंदा रहना है। वो दर हकीकत क्या कह रहा होता है? एक हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिससे दूसरों को नफा पहुंचे। वो दर हकीकत उस हदीस को अपने अल्फाज में तर्जुमा करके आपसे कह रहा है कि आज से तुम्हारी अपनी जात खत्म, दूसरे सब कुछ। आज से तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिंदा रहोगे। तो ये अगला कदम वो उठवाता है। तो ये कदम उठाने के बाद इंसान के अंदर एक तब्दीली वाकई होती है, वो है आजजी आने लगती है। इंसान ये समझने लगता है कि मैं छोटा हूं सबसे, और जो ही इंसान में ये चीज पैदा होती है कि मैं सबसे कमतर, हर कोई दूसरा मेरे अलावा जो कोई है वो मुझसे कहीं बरतर, तो फिर इल्म का फ्लो शुरू होता है इंसान की तरफ, क्योंकि पानी की तरह इल्म भी नशेब की तरफ बहता है, कभी बुलंदी की तरफ नहीं चढ़ता। तो फिर इल्म का बहाव इंसान की तरफ होता है, जो अपने आप को पाक साफ करने के बाद अपने आप को इज के मकाम पर ले जाए, आजिज समझे अपने आप को। जहां इंसान इस मकाम पर आ जाए तो समझ ले कि अब अगर मैंने ये राह पकड़े रखी तो मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा, अल्लाह की दोस्ती मिल जाएगी, मुझे वो इल्म मिल जाएगा जहां मैं वो चीजें सोच सकूंगा जो दूसरों के जहन में नहीं आती हैं। उससे पहले मेरी तरह जैसे मुझे वक्त जाया करते करते उम्र बीत गई, तो ये मत कहिए कि मैं रूहानियत की राह पे चलना चाहता हूं, मुझे इल्म दे दें। मैं भी ऐसे ही आवारा फिरता रहा हूं, और अब तो न जाने आवारगी के किस मकाम पर चला गया। रूहानियत के इल्म की दरख्वास्त करने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह से तैयार करके लेके जाएं, ताकि जिससे जाके हम सवाल करने लगे हैं वो छूटते ही हमारी झोली में कुछ न कुछ डाल दे। किसी साहब ने सवाल पूछा है कि आपकी ये जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंद खुद को तालिबान कहते हैं, क्या राय है? ये कोई फितना है या ये हक पर हैं? मैं आपकी खिदमत में जवाब अर्ज कर देता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे इनके सामने डाल रहे हैं आप? मैंने अभी आपसे एक अर्ज की थी कि इल्म के एक खास मकाम तक, अक्ल के एक खास मकाम तक अगर इंसान न पहुंचे तो यूगोस्लावियन जुबान की मैंने एक प्रवर्ब आपके सामने कोट की थी, तो खतरनाक हो जाता है। मैं इन्हें ना तो ये कहता हूं कि ये फितना है, ना मैं इनको ये कहने को तैयार हूं कि भटके हुए हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा भटका हुआ तो मैं हूं। ये हमारे मुसलमान भाई हैं जो इस्लाम को उस नजर से देख रहे हैं जो उनको पढ़ाया गया है। ये उनका नुक्ता नजर है, और मेरे मजहब में तो ये है कि हर इंसान बकौल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों के कि इनको इनकी माओ ने आजाद जना था, तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम इन्हें गुलाम बना लो? तो मेरे मजहब के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक, हम में से हर इंसान आजाद है। उसको यह हक हासिल है कि वो अपनी एक राय कायम कर सके और उस राय का बरमला इजहार कर सके। सिर्फ जरा सी एहतियात ये कि जब हम अपनी राय का इजहार करते हैं तो उसमें किसी को नुकसान न पहुंचे, किसी का दिल न दुख जाए, किसी की तहकीर न हो जाए, किसी की तजहीक न हो जाए, किसी का तमस्कर न उड़े। ये जरा सी एहतियात चाहिए, वरना इन्हें भी हक है, ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं कि वो अपनी राय कायम भी करें और उस राय का इजहार भी करें। वो हक उन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन उस इजहार में कहीं किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान न पहुंचे, बल्कि दूसरे इंसान को नुकसान न पहुंचे, न जहनी न जिस्मानी। इन साहब का दूसरा सवाल ये है कि ये जो प्राइस बॉन्ड्स या बीमा पॉलिसी है, इस पर आपकी क्या राय है? तो इन्होंने एक पेशबंदी की है कि मैं आपसे फतवा नहीं मांग रहा, सिर्फ आपकी राय पूछ रहा हूं। बात यह है कि मेरी जाती राय अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो तो मैं दे सकता हूं, लेकिन फतवा देने का अहल नहीं हूं। फतवा आप किसी मुफ्ती से ही लीजिएगा, वही बेहतर है। मेरी जाती राय में प्राइस बॉन्ड और बीमा पॉलिसी दोनों जायज नहीं है। किसी साहब ने सवाल किया है कि क्या इंसान नमाज में रब ताला से मांगता है, या रब ताला अपनी रहमत से खुद ही अता फरमा रहे होते हैं और इंसान सिर्फ जो रब ताला अपनी रहमत फरमा रहे होते हैं उसका इजहार कर रहा होता है? जो कुछ हम नमाज में पढ़ते हैं वो रब ताला की हमदोसना के बाद, रब ताला की शुक्रगुजारी करने के बाद दुआ कर रहे होते हैं। जो कुछ हम पढ़ते हैं वो दुआ है, और फिर हम दुआ पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं दुरूद शरीफ पढ़कर। बात यह है कि हमें आजजी की तरफ और इज्ज़ सिखाने का आसान तरीका यह है कि हम रब से मांगते रहें। रब ताला की अता करने की सिफ्त हमारे मांगने की मोहताज नहीं है, वो इतनी बेपाया है, इस कदर वसी है कि कोई मांगे या न मांगे उससे वो अता करता रहता है। ये जो उसके सामने हाथ फैलाने की तलकीन है, ये उसके सामने सर झुकाने का हुक्म है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम भटक न जाएं, हमें ये एहसास रहे कि रब वो है जो ऊपर बैठा है और हम उसके आजिज बंदे हैं। जो कुछ हमारे पास है ये हमारे रब ही का अता करदा है, ये हमारा नहीं है। तो ये उसी सूरत में हमें याद रह सकता है जब हम दिन में बार बार उससे मांगते रहें। तो ये जो मांगना है ये तो एक हुज्जत है, वरना रब ताला की शान रबूबियत ऐसी है कि वो हमारे मांगने का मोहताज नहीं कि हम उससे मांगे तो वो कुछ दे, वो तो बिन मांगे आता फरमाता है। इसीलिए जो कुछ हम मांगते हैं उससे कहीं ज्यादा मिल रहा होता है, और वो कुछ भी मिल रहा होता है जो हम मांगते ही नहीं। हमें तो खुद पता नहीं चलता कि साल के बाद हमारी जरूरियात क्या होंगी, तो रब तो उनको वक्त से पहले पूरा करके बंदोबस्त करके हमारे सामने डाल देता है। ये शान रबूबियत उसकी बहुत बुलंद है, इन तमाम चीजों से बालातर कि उससे कुछ मांगा जाए तो वो दे, खुद अता करता है। लेकिन मांगना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमारे अंदर इज्ज़त पैदा हो, बंदा होने का, गुलाम होने का एहसास रहे कि हम रब के बंदे हैं, रब के गुलाम हैं, वो आका है। एक और सवाल फरमाया कि मैंने अक्सर वली अल्लाह जो गुजरे हैं उनके हालात जिंदगी पढ़े, मगर उनमें से तकरीबन तमाम रब ताला के मुंतखिब करना है। रूहानियत की राह पर चलने वाले लोग भी बहुत बाअमल होते हैं तो रब उन्हें अपना कुर्ब अता कर देता है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिनके हाथ खाली हैं अमाल के लिहाज से, मगर उनकी आंखें अपने रब के लिए दिन रात रोती रहती हैं, सीने में एक अजीब फराक की आग महसूस हुई है जो न चैन लेने देती है कि आंसुओं को रुकने देती है। ये क्या है? क्या ऐसे लोगों को रब मिल जाएगा? मांगने वाले की तो कोई हद नहीं होती, वो सब कुछ मांगना चाहता है मगर देने वाला उसकी औकात के मुताबिक देता है। क्या ऐसा ही है? मतलब ऐसे को रब देगा या अपना कुर्ब मगर एक वली अल्लाह या नेक शख्स से ज्यादा नहीं? अभी मैं अर्ज कर रहा था कि उसकी शान रबूबियत, उसकी जुदो सखा बेहदो हिसाब है। वो इंतजार नहीं करता कि उसका बंदा मांगे तो वो दे, वरना नहीं, बिन मांगे अता करता है। वो मालिक कुल कहलाता है, वो अपनी मर्जी का मालिक कहलाता है, वो किसी को जवाब दे नहीं है। उसकी कुदरत कवायद जवाबत की पाबंद नहीं, ना उसका ऑडिट होता है कि उससे सवाल पूछा जाए कि ये क्यों दिया और क्यों नहीं दिया। वो इन तमाम चीजों से बालातर है। वो बख्शने पर आता है तो तवाइफ को इसलिए बख्श देता है कि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। पकड़ करने पर आता है तो वो चींटी जो एक वली अल्लाह के हाथ से पत्ते पर बैठी हुई उलट गई थी और दरिया में डूब गई, उसके खून का बदला उससे ले लेता है। लेकिन एक बात यकीन से कही जा सकती है कि उसको अपने बंदे के आंसू बहुत अजीज हैं। वह आंसू जो उसके खौफ से बह निकले, वह आंसू जो शर्मिंदगी के मारे बह निकले। मैंने यहीं कभी एक किस्सा सुनाया था कि एक साहब थे जो खासे ज़ईफ़ुल उम्र हो गए थे, लेकिन उनकी तमाम उम्र में एक नमाज भी ऐसी नहीं थी जो उन्होंने बाजमात अदा न की हो। एक रात सोए, जब आंख खुली सुबह, तो उस वक्त इमाम साहब सलाम फिर चुके थे, जाके नमाज तो अदा कर ली, लेकिन तमाम दिन इस दुख से रोते रहे कि मेरी बाजमात नमाज खता हो गई। सारा दिन का रोते में गुजर गया। अगली रात को फिर सोए, जिस कमरे में रहते थे उसको अंदर से वो बाकायदा बोल्ट करके सोते थे। तो सुबह उन्हें ऐसा लगा कि किसी साहब ने उनका कंधा पकड़ के हिलाया है और आवाज दे रहे हैं कि उठो, नमाज का टाइम हो गया। तो आंख खोल कर देखा तो वाकई वहां एक आदमी खड़ा था। तो इन्होंने सबसे पहले दरवाजे की तरफ नजर डाली तो पता लगा दरवाजा बदस्तूर अंदर से बोल्ट है और कोई रास्ता अंदर दाखिल होने का था नहीं। तो उस हैरत और परेशानी में पूछा कि भाई तुम कौन हो और अंदर कैसे दाखिल हो गए? तो उसने जवाब दिया कि मैं शैतान हूं, तो मेरे लिए बंद दरवाजे बंद किवाड़ कोई मायने नहीं रखते। तो मैं आया था कि आपको नमाज के लिए जगा दूं। तो इन बुजुर्ग ने फौरन पूछा कि नमाज के लिए जगा दो? तुम्हारी ड्यूटी तो ये है कि तुम नेकों को भटका दो, लोगों को गुनाहों के रास्ते पर चलाओ, तो ये तुम क्या कर रहे हो कि मुझे नमाज की राह दिखा रहे हो? तो शैतान ने जवाब दिया कि असल में कल जो आपकी बाजमात नमाज मिस हुई और आप तमाम दिन रोते रहे, तो रब ताला ने आपके नाम अमाल में बाजमात नमाज से दुगना सवाब लिख दिया। तो मुझे ये गवारा नहीं कि कोई आदमी दो गुना सवाब ले जाए, तो इसलिए मैं जगा रहा हूं कि आप उतना ही सवाब लेते रहिए जो लिखा जाता है। तो रब ताला तो अपने बंदों के आंसुओं का भ्रम इस तरह कायम रख लेता है। तो अगर आपके दिल में फराक की आग जल रही है आपके अल्फाज में, तो फराक की आग तो इंसान के दिल में उसी वक्त भड़कती है जब किसी को अपना महबूब बना ले। तो जब आपने रब को अपना महबूब बना लिया तो ये उसकी वजादारी और हया के खिलाफ है कि वह आपको अपना प्यारा ना बनाए। वो जरूर आपको अपना कुर्ब अता फरमाएगा अगर आपके ये अल्फाज दुरुस्त हैं। किसी साहब ने शायद उसको रेफर किया जो मैं अभी कह रहा था कि दिल की सफाई करना पड़ती है। उन्होंने लिखा है कि दिल की इन बीमारियों को निकालने में दुश्वारी हो रही है। या मेरे पास ऐसा कोई वजीफा या तस्बीह है नहीं कि मैं आपको दे दूं और आपके बगैर मेहनत के ये सफाई हो जाए। जिन चीजों का अज्र इतना बड़ा है तो यकीन रखिए कि उस पर मेहनत भी उतनी ही लगती है। मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। आपको अपने नफ्स की आवाज को खत्म करना होगा। जो कुछ आपका नफ्स आपको कहता है बिल्कुल उसके बरक्स कीजिए, 180 डिग्री अपोजिट, तो खुद ब खुद ये बीमारियां दिल से निकल जाएंगी। नेक्स्ट संडे तो मैं नहीं हूंगा, उससे नेक्स्ट संडे इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम।